कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है।
आज आप सबको देख के लगता है कि बाबा कहता है रोज मुरली में कि बच्चों को जल्दी जल्दी संपन्न बनना चाहिए, है ना। अचानक परिवर्तन हो जाएगा तो संपन्न कैसे बनेंगे। तो रोज हम मुरली सुनते हैं, योग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, तो भी देखा गया हमारे जो संस्कार है वो परिवर्तन नहीं होते ना। जो पांच विकारों के संस्कार है वो परिवर्तन चाहिए। तो हम समझते हैं सवेरे योग किया अपने तरीके से और मुरली भी सुनी, तो सुनने से दुनिया में कहते हैं श्रवण सब कुछ नहीं है, लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। कभी भी आप देखो, बाबा भी कहता है बच्चे सुनने के बाद समझ में आया, समझने के बाद ही उसका प्रयोग होता है। हम सुनते बहुत कुछ है, पढ़ते भी है, सुनते भी है, पढ़ते भी है, लेकिन समझ में जो आता है वो बहुत कम आता है। जब तक बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया है तब तक आचरण में नहीं आता है। नहीं तो हम क्या समझते हैं, सवेरे मुरली सुनी लिख भी लिया है तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। नहीं, देखा गया नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे देखो मार्केट में दवाई मिलती है, सिर दर्द भी है, दवाई ला के आप रख दो जेब में भी रख दो तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ दवाई है हमारे पास, लाया है, हमारे पास भी है, लेकिन उसको विधि अनुसार लेना पड़ता है, लगाना पड़ता है, एप्लीकेशन चाहिए। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान और योग का प्रयोग चाहिए, अपने संस्कारों के ऊपर उसको एप्लीकेशन चाहिए। वो देखा गया होता नहीं है। सुनते भी है ज्ञान, नोट भी करके रखते हैं हम, लेकिन उसको बार बार चिंतन करे, अपने संस्कारों के उसका प्रयोग करे, ये थोड़ा मेहनत का काम है, समझ के काम है। क्योंकि हमारी धारणा जो बनी है भक्ति के आधार से है, सत्संग किया, ज्ञान सुना, बहुत अच्छा था, इतना तक ही है। उसको सुनने के बाद एकांत में बैठ के, बहुत दफा बाबा उदाहरण देता है, गाय क्या करती, खेती में जाती है तो फटाफट खा लेती है, फिर एकांत में जाके बैठती है और उगारती है। तो ऐसे हमने सवेरे आधा एक घंटे के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स सुने, नोट भी किया, फिर सारे दिन में अपने सेवा में कर्मों में इतना लिप्त हो गए। तो वो डायरी कब खुलेंगे, कल सवेरे जब क्लास में आएंगे तब खोलेंगे। तब तक ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत जन्मों से जो हमारे संस्कार आदत बनी हुई है वही रिपीट होती है। सुनने के बाद समझ, सुनने के बाद भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। लेकिन समाज लोग क्या चाहते हैं, आज सुनना नहीं चाहते, कुछ देखना चाहते हैं, हमारे आचरण के अंदर बोल के अंदर कुछ देखना चाहते हैं। इसलिए कहा गया कि ज्ञान सुनने के बाद अगर आप अभी दो तीन दिन यहां हैं तो यहां ही अभ्यास करके देख लो, यहां से शुरू करो ज्ञान सुनने के बाद। तो अगर इस विधि से अगर आप सुनते हो, आज अगर मुरली सुनी आपने इस विधि से, आज एक दिन याद रख सकते हो। और एक विधि से अगर आप सुनते हो उसी ज्ञान को तो एक महीना तक याद रख सकते आप, और आज सुनी हुई मुरली 10 साल तक भी आप याद रख सकते हैं। ऐसे हमारे पास मशीन बाबा ने दिया है, सिर्फ उसको यूज करने की विधि चाहिए। हमारे अंदर ऐसे मेमोरी पावर है, यादाश्त शक्ति है, उसको यूज करना है। आज ही मुरली सुनिए, 10 साल तक भी आप याद रख सकते हो, तो वो अभ्यास चाहिए। तो क्या होता है, नहीं तो ज्ञान सुना याद नहीं है, तो समय पर किसी ने कुछ गलत बोला तो गुस्सा आ जाता है, चाहते भी नहीं है, लेकिन समय परिस्थिति तो ऐसे आएंगे ना, वो आपको पूछ के नहीं आती है, अचानक आता है। अगर आपने ज्ञान का मनन चिंतन करके ज्ञान को अच्छी तरह से अपने अनुभव के अंदर डिपॉजिट कर दिया है, स्टोर किया है, अनुभव के रूप में धारण कर लिया है, तो समय पर अनुभव काम में आता है और वहां सफलता मिलती है। नहीं तो ज्ञान जानते हैं, परिस्थिति आई, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज आ रहा है लेकिन ब्रेक लगता नहीं है, क्यों? अनुभव किया नहीं है। तब कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी है, ज्ञान एक अथॉरिटी नहीं है, इंफॉर्मेशन एक अथॉरिटी नहीं है, ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग चाहिए और वो प्रयोग से होता है। तो उसके लिए एक विधि अगर आप अपनाओ, हमने अपने जीवन में अनुभव से देखा, जब ज्ञान सुनते हो मुरली सुनते रहो, सुनते सुनते 4 सब्जेक्ट होते हैं मुरली के अंदर, 4 विषय होते हैं, उसमें से किसी को सेवा की उमंग उत्साह है, किसी को बाबा के श्रीमत अच्छे लगते हैं, किसी को योग करना अच्छा लगता है, हर एक की अपनी अपनी रुचि है, क्योंकि बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है, सभी राजा ही नहीं बनेंगे ना, सभी प्रकार के होंगे, हर एक अपना अपना लक्ष्य है। तो सुनते सुनते आप देख लो, आज ये मेरे लायक अच्छा पॉइंट है, जो आपको अच्छा लगता है उसको नोट कर लो, एक और एक देख लो, ऐसा 2, 3, 4 पॉइंट जो आपको अच्छे लगते हैं, सारी मुरली नहीं नोट करो, तो आपको जो अच्छे लगते हैं आपके जीवन के लक्ष्य के अनुसार, ऐसे 2, 4 पॉइंट नोट करो। फिर जब मुरली लास्ट में गीत बजता है तो एक दफा देख करके पढ़ो कि मैंने कौन से पॉइंट लिखे हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसमें से पहले नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, ये मुझे आज अभ्यास करना चाहिए, उसको अंडरलाइन करो। आज मुझे क्या करना है, इसका अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद आप उठ करके यहां से नाश्ता करने जाते हो, अगर बाहर जाते ही अगर और किसी बातों में गए, जो आज सुनी हुई मुरली रात को अगर आपको किसी ने पूछा, जो आपने अंडरलाइन किया था वो पॉइंट आप रिपीट कर सकेंगे अपने आप। आज कोई पूछेंगे आज क्या सुनाया था, एक पॉइंट आप तुरंत रिपीट करेंगे, क्यों? आपने सुना, लिखा और रिवाइज किया। तो एक दिन की कैपेसिटी है याद रखने, टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। अगर बाहर जाने के बाद आपने किसी से बात नहीं की, नाश्ते तक मनन दे रहे, बाबा ने आज कहा बच्चे की बनना की है, कैसे मनन चिंतन कर, मैं आपसे बात करते रहे, अपने भाई बहन मिलते हैं सारा दिन में, अगर मुख से वर्णन करो, देखो बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताई थी, आज बाबा ने ये कहा था, अगर मुख से आप वर्णन करते हो, 1, 2, 3, 4 को अगर बताते हो मुख से, तो देखना आज सवेरे सुनी हुई मुरली 10 साल तक आपको याद रहेंगी। सवेरे एक ही दफा आपने सुना, लिखा और यहां ही बैठ के रिवाइज करो, देख लो एक बार क्या करना, और उसमें से एक पॉइंट अगर सिलेक्ट करते हो, ये मुझे आज आपके चॉइस के अनुसार, इच्छा के अनुसार, तो ये मुझे आज अभ्यास करना चाहिए। यहां तक उसके बाद बाहर जाते ही किसी से बात करते रह गए और कोई बातों में गए, बस वहां हो गया। रात को अगर अचानक किसी ने पूछा, भाई जी आज बाबा ने क्या कहा था, वो एक पॉइंट जो आपने अंडरलाइन किया था वो एक पॉइंट, या आज बाबा ने हाँ ये कहा था, तुरंत आप बता देंगे। लेकिन कल पूछेंगे तो नहीं। तो टेम्पररी मेमोरी है, एक दिन तक याद रहेंगी। अगर इसको आपने और परमानेंट करना है तो आप उसके ऊपर और मनन चिंतन करो। यहां से नाश्ते तक, क्यों हरेक के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेवारी है, संसार की है, कुछ ना कुछ तो है, कोई ऐसा नहीं है। तो उसमें हम इतने लिप्त हो जाते हैं तो जो ज्ञान का प्रभाव मिट जाता है, उसका इतना प्रभाव है, हम उसको इतनी जिम्मेवार समझते हैं, उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं, तो ये ज्ञान ठहरता नहीं वहां। और हमारी बुद्धि भी इतनी स्वच्छ नहीं है, उसके कारण ग्रहण भी नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा समय चाहिए, कम से कम आपके पास नाश्ते तक समय है, यहां से घर जाने तक समय है, कमरे तक समय है, तो और इधर उधर की बातें न करके अगर उसी का थोड़ा सा आप चिंतन करेंगे, अपने आप से बात करेंगे कि बाबा ने आज ये कहा, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे धारण करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो अगर आप सोचते जा रहे हो तो और थोड़ा डीप हो जाता है। तो एक महीने तक आपको अपने आप, अगर पूछेंगे उस दिन शांतिवन गए थे बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा ने सवेरे मुरली में ये सुनाया था, याद रहेगा एक महीने तक। अगर उसी को आप और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, दो सवेरे शाम तक कोई किसी को ना किसी को आप मुख से वर्णन करो, देखो बाबा ने आज ये बताया, बात करो, डिस्कशन करो, मिलना चाहिए, लेकिन ज्ञान की बात करो, मुख से वर्णन होना चाहिए। मुख में तब आएगा अगर स्मृति है, याद है तो आएगा ना, नहीं तो नहीं आएगा। पूरा सेंटेंस आप रिपीट कर ही नहीं सकेंगे। अगर अच्छी तरह से अंदर रिकॉर्ड हुआ है तो तुरंत आप बता देंगे आज बाबा ने ये कहा था। सवेरे दिन में शाम तक दो या तीन भाई बहनों का आप जरूर मुख से वर्णन करो, और देख लो आप 10 साल तक आज की मुरली आपको याद रहेंगी। कुछ बहुत पढ़ने से नहीं होता है, हम समझते बहुत पढ़ना चाहिए। कभी कभी कोई कहते हैं हम दिन में 10 दफा मुरली पढ़ते हैं, 5 दफा मुरली पढ़ते हैं, फिर भी शाम को पूछो एक भी सेंटेंस रिपीट नहीं कर सकते हैं। पढ़ना ही सब कुछ नहीं, विधि है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। एक ही दफा सवेरे सुनो बस, लेकिन इस विधि से अगर आप पढ़ते हो तो बुद्धि के अंदर याद है। जब कर्म क्षेत्र पर जाते हो संसार में तो प्रयोग कैसे करना चाहिए अभी वो सोच लो, तब तक बाबा को एक मिनट याद करो, इसको अंदर रिकॉर्ड कर लो। तो इसमें से माताएं कहेंगे हम जो लिखना पढ़ना नहीं जानती है वो क्या करे, अगर लिखना नहीं जानते हो तो आप अड़ोस पड़ोस वालों को जिसको जानते हो उनसे पूछ भी सकते हैं, है ना, बार बार पूछो, जब 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 मिलते हो सारा दिन में आज बाबा ने क्या कहा है, तो औरों से पूछ भी सकते हैं। तो माना हमारे मुख से वर्णन होना चाहिए ज्ञान का, नहीं है सुनी हुई बात अंदर सदा के लिए रहती नहीं, थोड़े समय तक रहेंगी, फिर उसके ऊपर दूसरी बात आ गई, सुनी हुई बात भूल गए, इसलिए उसको रिवाइज करना चाहिए, फिर मुख से वर्णन भी करना चाहिए, तब बुद्धि के अंदर ज्ञान याद रहता है। अब संसार क्षेत्र में कर्म करते करते कोई ना कोई परिस्थिति आती है, ऊपर नीचे होगा ही जरूर, परिस्थिति को आप रोक नहीं सकते, वो आएंगी ही, उसके ऊपर ये ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो। अगर चिंतन करके अनुभव किया हुआ है, अपने स्वभाव संस्कार है पता चलता है, तो उसके ऊपर आप, जैसे क्रोध है, कितने समय से हम सुनते आए हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहते भी नहीं है, लेकिन वो ज्ञान सुनने से क्रोध अपने आप नहीं जाएगा। तो एकांत में बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमको क्रोध क्यों आ रहा है, क्रोध सामने वाला ने गलती किया तो क्रोध करने से वो ठीक हो गया, तो अपने आप को बाबा क्या कहता है, मुझे क्या करना चाहिए, हाँ उसने अपना काम किया, मेरा काम क्या है। तो बैठ करके अपने आप से बात करो, और बाबा ने क्या कहा है वो दवाई लगाओ, नहीं बाबा ने कहा बच्चे तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, उस जहां आग लगी उस समय आप शांति का दान दे दो, कुछ भी बोलने नहीं जाओ, गरम तवा है ठंडा पानी भी डालो तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैं ठंडा पानी डाला है, लेकिन तवा गर्म है। दिमाग जब गुस्सा करता है उसका दिमाग गर्म होता है, उस समय आप कितने प्यार से भी बात कर लो तो सुनेगा, सुनाई देगा उसको? नहीं। आप कहेंगे मैंने बहुत धीरे से प्यार से बात किया, नहीं, उस समय चुप शांत चाहिए। समय परिस्थिति देखकर बाद में आप अपनी बात बाद में रखो, लेकिन वहां तक हमको सहन करने के लिए अपने आप को पहले पूर्व तैयारी चाहिए, उसी समय नहीं हो सकता है। आप कहेंगे अब भी हो जाएगा, सुनने से होगा, नहीं, सुनने के बाद जब बाबा मुरली में सुनाता है, सुनने के बाद आप एकांत में बैठ के कर्म करते अपने आप से बात करो, अपने को समझाओ कि बाबा ने आज कहा गुस्सा नहीं करो, तो सामने वाले उल्टा सीधा बोलेगा, कुछ करेगा, चुप रहे हम और भी करता रहेगा, तो बुद्धि आर्ग्यूमेंट करती है, नहीं ये नहीं हो सकता। इसलिए कहा सुनने से आचरण में नहीं आएगा। सुनने के बाद क्या हमारी बुद्धि उसको स्वीकार करती है? अगर बुद्धि ने स्वीकार किया हां मुझे ये करना है, दृढ़ हो गया हो, तो अपने आप आचरण में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट सुनते हैं हम, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कब तक चुप रहेंगे, वो और करता रहेगा, वो ऐसे बोलता जाएगा, तो ये आर्ग्यूमेंट चलता है। तो उस समय एकांत में बैठकर कर्म करते हुए भी आप अपने आप से बात करो, बुद्धि को समझाओ, नहीं हमको ये किसने कहा है, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? तो अगर आप इसको स्पष्ट करते हो, अपने आप को समझाते हो, तो बुद्धि स्वीकार करती है, हां ये हमको भगवान ने कहा है, अगर कुछ हो भी जाए वो जिम्मेवार है, उसने जिम्मेवार लिया है, वो कहने वाला कौन हमको? तो ये जब बुद्धि के अंदर स्वीकार होता है, तब ये बात आपके बुद्धि में फिट बैठ गई, धारण हो गया। जब सामने सारे दिन में, दूसरे दिन, तीसरे दिन कब ऐसी परिस्थिति आती है, सामने वाला गुस्सा करता है, तब बुद्धि अपने आप चुप रहती है, रिएक्ट नहीं करती है, कि उसको समझ में आया है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये पूर्व तैयारी चाहिए। लेकिन ये हमसे नहीं होता है, हम सुनते हैं, नोट भी करते हैं, लेकिन अपने आप को समझाना ये तैयारी नहीं होती। उसके कारण ज्ञान सुनते हुए भी हमारे आचरण में नहीं आ रहा है। संस्कार तो मर्ज एमर्ज होंगे, हमारे हाथ में है, उसको मर्ज करना या एमर्ज करना, जागृत करना या उसको थंबा के रखना। अगर उसमें आपने दोबारा कर्म गुस्सा किया तो संस्कार आपने जागृत किया। अगर ज्ञान का प्रयोग किया, समझाया आपने आपको कि सामने वालों ने, किसी ने कुछ भी किया, मुझे गुस्सा नहीं करना है, ये पहले चाहिए, आज मुरली सुनी, आज ही समझा के तैयार करो, सारा दिन ले लो उसके लिए, एक ही पॉइंट आज ले लो, बार बार अपने आप को समझाते रहो कि आज सारा दिन में इसके ऊपर मुझे चिंतन मनन करना चाहिए, बुद्धि को समझाना चाहिए, ये इसको पक्का करना चाहिए, इसको दृढ़ करना चाहिए, किसी भी हालत में मुझे नहीं करना है गुस्सा। जब बुद्धि इस बात को अच्छी तरह स्वीकार करती है, सारा दिन में मनन चिंतन करते हो, एक पॉइंट आपके अंदर धारण हो गया, आज किसी ने गुस्सा नहीं किया, एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद वो परिस्थिति आएंगी तो बुद्धि अपने आप कंट्रोल करेंगे उसको, कि बुद्धि को आपने पहले से ट्रेनिंग दे दिया है ना। युद्ध के मैदान में जाने वालों को इन एडवांस रिहर्सल कराते हैं, पहले सिखाते हैं, अस्त्र देके एकदम युद्ध के मैदान में भेजो तो कुछ नहीं कर सकेगा, अस्त्र चला भी नहीं सकेगा, तो ये ज्ञान भी अस्त्र है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, किस समय यूज करना चाहिए, किस विधि से यूज करना चाहिए, ये पहले आज मुरली सुनी, आज ही आप एक ही पॉइंट ले लो। हम क्या बहुत पॉइंट लिखते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं, लिखने से सुनने से हो जाएगा, सत्संग इस प्रकार का नहीं है, ये भक्ति मार्ग में आदत है हमको, बैठ के कहानी सुनी, रामायण सुना, महाभारत सुना, गीता का श्लोक सुना, बहुत अच्छा था, नहीं ये वो भक्ति नहीं है, यहां समझ एजुकेशन है, ये अपने बुद्धि सुनने के बाद अपने आप को समझाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। जब बुद्धि संबुद्धि के अंदर समझ में आया कि मुझे ये करना चाहिए, एक पॉइंट ले लो आज, और जब जब परिस्थिति आती है तो बुद्धि अपने आप उसके ऊपर कंट्रोल, उसको कहा कि बाबा ने शक्तियों का लगाम, अपने संस्कार अपने मन के ऊपर शक्तियों का लगाम चाहिए। वो कहां से आएंगे? जो आपने सुन करके उसका अभ्यास किया, अपने आप नहीं आएगा, सुनने से नहीं होगा। तो इस विधि से ज्ञान को सुनना चाहिए। कल दूसरा पॉइंट ले लो आप, परसों और एक पॉइंट ले लो, एक हफ्ते के अंदर कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम बहुत किताबें पढ़ना चाहते हैं, बहुत बार बार पढ़ने से याद रहेगा, नहीं, एक दिन में एक पॉइंट बस। 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट्स के आप अनुभवी बन जाएंगे। सिर्फ 30 पॉइंट आपको याद है ऐसा नहीं, 30 पॉइंट का आपने अपने जीवन में उपयोग किया है, अपने बुद्धि के अंदर मन के अंदर चिंतन करके बुद्धि के अंदर अनुभव जमा किया है। तब बाबा ने कहा एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, अनुभव एक अथॉरिटी है। आपको भी लगता मैं ये जानता हूं, इस पॉइंट को अगर किसी को आप समझाओ अच्छी तरह से, आप समझा भी सकते हो कि आपने सारा दिन इसके ऊपर मनन चिंतन किया है। इस विधि से ज्ञान का चिंतन होना चाहिए। हो सकता है ऐसा करते हैं नहीं, सुनते हैं, लिखते भी हैं और दोबारा रिपीट नहीं होता। जाने कर्म क्षेत्र पर गए, वो डायरी फिर कल सवेरे खुलेंगे, दूसरे दिन खुलेंगे, तो उसके कारण देखा गया। आम ऐसा नहीं, थोड़े तो होंगे, 5 पांडव तो होंगे, थोड़े तो करते हैं नहीं सही, लेकिन आम नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाबा चाहता है सभी को अचानक परिवर्तन होगा, समय बहुत नजदीक आ रहा है, तो अपने आप को तैयार करना चाहिए। जितना हम बाबा से मिलने के लिए लगन से दौड़ दौड़ के आते हैं, ये पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, है ना, कुछ करना पड़ेगा। कि साधारण चाहिए, साधारण नहीं, बाबा ने कहा राजयोग है, ये राजाओं का राजा बनाता है, 21 जन्मों के लिए राजा ही मिलते। आज बाबा ने कहा, बाबा आकर के क्या पढ़ाता है, किसके लिए पढ़ाता है, प्रजा बनाने के लिए नहीं। तो इसलिए पढ़ाई हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। इसके लिए इस विधि से अगर हम अभ्यास करते हैं तो बुद्धि में ज्ञान याद रहता है। तो संसार में कर्म करते हुए कोई कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो बुद्धि उसके लिए तैयार हो जाती है सामना करने के लिए। कहीं जगह पर सामना करना पड़ता है, कहीं जगह पर सहन करना पड़ता है कि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, सहन करना है। बाबा ने कहा सहन करो, सबसे अष्ट शक्तियां मिलती है। कहीं जगह पर हमें सहयोग देना है, कहीं जगह पर एडजस्ट करना पड़ता है। ये सब शक्तियां फिर कैसे आएंगी, तो ज्ञान के द्वारा मन चिंतन करने से मन स्वच्छ होता है। जब आप योग में बैठेंगे फिर आता है योग की शक्ति भी चाहिए, ज्ञान और योग दोनों चाहिए, तब जाके हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। आप जानते हो, देखना टेप रिकॉर्डर के अंदर अगर एक बटन दबा दो तो कैसेट चलेंगी, आवाज भी आएगा लेकिन अंदर आवाज रहेगा, ऐसा ही मिटेगा नहीं। तो टेप रिकॉर्डर के अंदर सिस्टम है, दो बटन दबाओ एट ए टाइम, एक ही दफा दो बटन दबा देंगे, जो पहले भरा हुआ गीत है वो मिटेगा भी, मिट जाएगा। और अभी अगर आप कुछ आप बात करेंगे, कर्म करेंगे, वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा। रिकॉर्ड भी करना है तो दो बटन दबाना पड़ेगा। तो यहां भी ऐसे सिस्टम है। जब आप योग में बैठते हो, अभी एक ज्ञान का हो गया, ज्ञान और योग का प्रयोग अपने संस्कार पर कैसे चाहिए। जब योग में बैठते हो देखा गया कि आंखें बंद करके बैठते हैं, राजयोग वो नहीं है, बहुत प्रकार का योग है। हमें जानना चाहिए सिरदर्द 4 प्रकार से होता है, तो सिरदर्द की दवाई मांगो आप तो दे देगा, लेकिन ये सिरदर्द किसके कारण हुआ है, किसी को माइग्रेन के कारण होता है, किसी को पित्त के कारण हो रहा है, तो उसके ऊपर लिखा रहता है दवाई के ऊपर कि डॉक्टर्स को पूछ के लेना चाहिए ये सिरदर्द हमें किसके कारण हो रहा है। तो ऐसे भी यहां योग भी बहुत प्रकार का है, स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है। तो ये राजयोग किसके लिए है, किसके लिए हम योग कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा कर्मातीत बनना चाहिए, हमारे विकर्म विनाश करना चाहिए, है ना। तो आत्मा पावन बन करके वापस घर जाएंगी। आजी बाबा ने कहा 5,000 साल हो गए आकर के, है ना, तो वापस जाना है ना, तो बाबा आया है वापस ले जाने के लिए, तो ऐसे जाएंगे, जो भरा हुआ है उसको मिटाना पड़ेगा। तो उसको मिटाने के लिए विधि है, उस विधि से अगर आप योग करते, इसलिए बाबा को कहा भगवान कौन, पतित पावन, पाप कटेश्वर, ही इज अ लिबरेटर, ही इज अ प्यूरिफायर, पतित को पावन करता है। हमारे अंदर पाप है बताता है कौन, बताता है अगर किसी के अंदर बीमारी है कैसे पता चलेगा, तो एक्सरे निकाल के दिखाते हैं। तो आप भी देख सकते हो हमारे अंदर, बाबा ने शुरू शुरू में इस साल पहली मुरली में कहा सेल्फ रियलाइजेशन, तो अपने आप को देख लो, हर एक जानता है, इसलिए हम चार्ट लिखते नहीं, लिख नहीं पाते हैं, तो लिखेंगे तो रोज नेगेटिव ही है, आज गुस्सा किया था, आज झूठ भी बोला था, आज ये भी किया, तो सदा नेगेटिव आता है, उससे मुक्ति नहीं होते हैं, तो लिखना बंद कर देते हैं। तो इस क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं लिख पाते हैं, तो ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा है, विधि पूर्वक योग नहीं हो रहा है। इसलिए योग करने की विधि चाहिए। जब भी योग में बैठते हो, कभी कल सवेरे से, अभी सुन लो, आज कल से यहां ही अभ्यास करके देख लो, क्यों इस वातावरण में अगर आप अभ्यास करेंगे तो उस वातावरण में, घर में, सेंटर में जाएंगे तो वहां अभ्यास करना सहज होगा। यहां कभी कभी हम क्या करते हैं, यहां सुन करके जाएंगे वहां जाके करेंगे, नहीं, यहां से शुरू करो। तो यहां सुनने के बाद यहां बैठो, योग में बैठो, फ्री होके आराम से बैठो, आंखें खोल के बैठना चाहिए, और दृष्टि को अगर चाहिए तो बाबा के तरफ देखते रहो, एक जगह पर दृष्टि रखो, और अगर देखते रहेंगे मन खाली होगा, तो खाली मन शैतान का काम करेगा, इधर उधर जाएगा। हाँ, कभी कभी हम मन के अंदर चिंतन करते हैं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, चमकता हूं, बुद्धि खाली है, तो बुद्धि क्या करेंगे, कुछ ना कुछ याद दिलाएंगे, अरे आज किसको फोन करना था, तो खाली बुद्धि भी भटकती है। तो हमारे राजयोग के अंदर मन और बुद्धि, ये दोनों यहां से परम धाम तक ले जाना है, दोनों की यात्रा होना चाहिए। जैसे साइकिल पर आप बैठो तो साइकिल एक चक्का चल रहा है, दूसरा चक्का नहीं चल रहा है, तो आप आगे बढ़ रहे हो, जहां खड़े वहां ही है, आप कहेंगे मैं साइकिल चला रहा हूं, तो ऐसे हमारी यात्रा के अंदर ये दोनों शक्ति चलनी चाहिए, मन और बुद्धि। तो जब भी आप योग में बैठे, दोनों मन बुद्धि दोनों साथ साथ चलना चाहिए, दो बटन प्रेस होने चाहिए, यूज होना चाहिए, इन दोनों का प्रयोग होना चाहिए। इसलिए जब योग में बैठते हो तो अपने आप से बात करो, तो कैसे बात करें, तो एक विधि, तो जब भी आप योग में बैठे, बाबा कहता है रोज मुरली में, बच्चे आत्मा समझ फिर मुझे याद करो। तो आत्मा समझना मीन्स एक ही शब्द, मैं आत्मा हो गया, नहीं, मैं आत्मा हूं कहने से नहीं बनते हैं, तो उसका अभ्यास चाहिए। कैसे अभ्यास करें, तो 5 मिनट अभ्यास चाहिए। तो मन बुद्धि से बात करता है कि मैं कौन, रोज पूछो, कि बार बार हम शरीर के भान में आते हैं। जब योग में बैठते हो शरीर के भान से अपने को अलग करना चाहिए, तो अपने आप से बात करो। तो मन पूछता है बुद्धि से मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है मैं आत्मा हूं। इतना ही नहीं, और उसके गहराई में जाओ, तो आत्मा क्या चीज है ये, हाँ बाबा ने कहा आत्मा एक चमकता हुआ सितारा जैसा है, उसके अंदर क्या है, मन है। मन क्या करता है, मन के अंदर ये विचार कहां से आ रहे हैं, इस प्रकार के विचार क्यों चलते हैं, किस प्रकार के विचार चलना चाहिए, फिर बुद्धि क्या चीज है ये, बुद्धि हमारी क्या काम करती है, संस्कार हमारे कौन से हैं, कौन से संस्कार हम लेके आए थे, अब भी कौन से संस्कार हमने भरे हैं, अभी संस्कार को कैसे मिटाना चाहिए, उसके गहराई में जाओ, सोचो एक मैं कौन हो। 5 मिनट तक आप इसके ऊपर सोच सकते हो, अगर समय है और 10 मिनट तक, 1 घंटा योग में बैठना है, उस अनुसार आप उसके गहराई में जाओ, मन क्या करता है, मन इधर उधर क्यों जा रहा है, इधर उधर के विचार क्यों आते हैं मन के अंदर, तो बुद्धि हमारी क्या करती है काम, आप पूछ लो, अपने आप से बात करो, तो पता चलेगा हमारी बुद्धि के अंदर ये बातें याद रहती है, ये बातें बाबा के ज्ञान की पॉइंट्स याद नहीं रहता, क्यों, तो आपको जवाब मिलेगा, प्रश्न करो अपने आप से, फिर हमारे संस्कार कौन से संस्कार लेके आए थे हम, अब भी कौन से संस्कार भरे हैं, संस्कार को कैसे मिटाना चाहिए, कब संस्कार बनते हैं, ये योग में इसका चिंतन चाहिए। और दूसरा ले लो, फिर मेरा रूप क्या है, जैसे आसमान में सितारा चमकता है ऐसे सफेद चमकता हुआ सितारा हूं मैं, इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर देखो मेरे गुण कौन से गुण लेके आया था मैं, जब मन और बुद्धि दोनों, मन प्रश्न करता है बुद्धि जवाब देता है, जैसे मैं इस भाई को देखते बात कर रहा हूं तो इधर उधर देख नहीं सकता, कभी भी कुछ पूछ सकता हूं, इधर मेरी नजर जाती नहीं है, खाली है, उनको पता है यहां तक तो देखते नहीं है, तो खाली बुद्धि क्या क्या करेगा, खाली व्यक्ति इधर उधर देखता रहेगा ना। हाँ, तो ऐसे ही बुद्धि हमारी भटकती है, बुद्धि को हम काम नहीं देते हैं, मन चिंतन करता है, राम राम करते रहते ना, ऐसे रिपीट करते जा रहे हैं, नहीं, धीरे से मन बुद्धि से बात करता है कि मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगी, तब तक मन शांत होता सुनता है ना। ये दोनों अगर रोज ये पांच प्रश्नों का अगर आप चिंतन करते हो, मैं कौन, दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे गुण कौन से हैं, जानते हो आप, ज्ञान सुनाया, सेवन डेज कोर्स सबने किया, उसके अंदर सब समझ है, सुनी हुई बात है, ये रोज रोज चिंतन में आना चाहिए, तो जागृत रहता है चिंतन। हाँ, मेरे ये गुण है, क्रोध करना मेरा गुण नहीं है, क्रोध करना सीख के नहीं मैं आया था। तो रोज रोज अमृत वेले अगर अपने आप को याद दिलाते हो तो बुद्धि के अंदर वो बात जागृत रहती है, एमर्ज रहती है, नहीं तो जानते हैं मर्ज रहता है। तो कार्य क्षेत्र में जब आते हो तो वो कार्य में आता नहीं है, उसके बाद कर्म होने के बाद याद आता, अरे हमने आज क्या किया, क्यों जागृत। इसलिए बाबा ने अमृत वेले सवेरे सवेरे उठकर अपने गुणों को जागृत करो, एक्टिव करो। तो अब मेरे गुण कौन से, चौथा मेरे कर्म, मैं शरीर में बैठ के क्या करता हूं, मैं माना शरीर समझता है, नहीं, शरीर साधन है और मैं साधक, मैं अलग हूं। तो अगर मैं शरीर से अलग हूं तो मैं कहां से आया, अब शुरू होता है योग, ऊपर से, ऊपर क्या है, सूर्य है, चंद्रमा, उसके ऊपर क्या है, प्रश्न करते जाओ, बुद्धि साथ में है, जवाब देती जाती है, जो प्रश्न करते हो तो उसका अनुभव होता है, हम सूक्ष्मतन पहुंच गए, हम परंधाम पहुंच गए, बुद्धि अनुभव करती है। तो मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलता है कि हमको दोनों को स्वच्छ करना है, मन भी स्वच्छ होना चाहिए, बुद्धि भी स्वच्छ होना चाहिए, दोनों साथ साथ काम करते हैं, जो अनुभव हो रहा है तो पुराने ऐसे संस्कार अपने आप मिटते जाते हैं। जैसे टेप रिकॉर्ड के अंदर दो बटन दबाते हो, अपने आप पुराना गीत इरेज होता जाता है, मिटता जाता है। तब आप कहते हो योग में बैठे अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव करने वाला कौन, बुद्धि अनुभव करती है। तो ये दोनों अगर इस प्रकार विधि पूर्वक ऊपर जाते हैं तो जितना समय मन और बुद्धि सूक्ष्मतन परम धाम में रहता है तो वहां स्वच्छ वातावरण है, उस शक्ति का अनुभव करती है। जैसे आप देख लो अभी यहां बैठे हो, दिन में भी बैठे थे, ऊपर सूर्य है लेकिन सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, गर्मी लगती थोड़ी सी, पसीना नहीं आता है, क्यों, सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, बीच में छत है। अगर ये हॉल छोड़ के आप बाहर खड़े हो जाओ, सूर्य आया हुआ है, सूर्य की किरणें पांच मिनट अगर शरीर को लगेगा तो क्या हो जाएगा, अपने आप पसीना निकालेगा ना, सूर्य अपने काम करता, आप चाहो या नहीं चाहो। अगर पांच दस मिनट आप धूप में खड़े हो जाओ तो क्या करेगा, वो अपने आप काम करता है, अपने आप पसीना निकलेगा। तो ऐसे ही आप उस वातावरण में जितना समय रहते हो तो वो शिव बाबा की शक्ति अपने आप आत्मा को चार्ज करती है, अपने आप नेगेटिविटी को क्लीन करता है। तो मन बुद्धि वहां तक ले जाना चाहिए और सहज विधि, आराम से बैठ करके इस प्रकार मनन चिंतन करो, अपने आप से बात करो, मैं कौन, एक विधि बताया, इस प्रकार प्रश्न और जवाब पूछते थे हो तो ये दोनों साथ साथ चलता है, एकाग्रता अर्थात मन और बुद्धि दोनों चलना, नहीं तो मन एक कर्त सोचता है, बुद्धि और कुछ सोचती है और कुछ याद आता है, तो ये दोनों शक्तियां ऐसे एडवर्स जाती है, एक रास्ते पर नहीं चलती है, दिशा देना चाहिए इन दोनों को, नहीं तो अपने अपने विचार के अनुसार अपने अपने दिशा में चले जाएंगे, अलग अलग विचार आएगा, तब कहेंगे मन भटकता है, योग लगता ही नहीं है। हाँ नहीं है, इधर बैठते बैठे नींद आ जाएंगी, नहीं तो व्यर्थ विचार आएगा, जागृत अवस्था नहीं। योग आधा घंटा करो, 15 मिनट बैठो, लेकिन वो पूरे 15 मिनट काम में आना चाहिए। ऐसे नहीं थोड़ा बैठे इधर देखते कोई आया गया तो इधर उधर देखने के लिए आके बैठे क्या? बैठे किसके लिए? कुछ लक्ष्य लेके आए, हमें कुछ साधना करना चाहिए। उस लक्ष्य लेके उसी विधि से अगर बैठते हो आप तो देख सकते हैं कैसा अनुभव होता है। तो ये ज्ञान और ये योग, इस प्रकार अगर आप बुद्धि के अंदर शक्ति है तो जब ज्ञान सुनते हो बुद्धि ज्ञान को ग्रहण करती है, याद रखती है। स्वच्छ बुद्धि के अंदर ज्ञान की धारणा होती है। जब बुद्धि को ज्ञान याद है, कर्म करते करते पुराने संस्कार जागृत होते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं हम, नहीं तो करना चाहते हैं, याद ही नहीं है, मुरली सुनी हुई याद ही नहीं है तो कैसे प्रयोग करेंगे? क्यों याद नहीं? बुद्धि स्वच्छ नहीं है, विधि पूर्वक अभ्यास भी नहीं किया है। इसलिए देखा गया ज्ञान सुनने के बाद भी, इतने साल चलने के बाद भी हमारे इस कड़े संस्कार, अभी भी लड़ाई झगड़ा, अभी भी मुख से गलत शब्द निकलता है। देखने में देखेंगे सेंटर में अभी भी ज्ञान रोज सुनते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं, लेकिन अभी भी मुख से समय पर गलत शब्द निकलता है, अभी भी क्रोध आता है ना? ऐसा ही है ना, सुनते हैं ज्ञान जानते हैं, चाहते भी नहीं है, ऐसा नहीं कोई चाहता है, लेकिन विधि पता नहीं है किस विधि से हमें अभ्यास। और ये रोज चाहिए, एक दिन दो दिन किया हो जाएगा नहीं, बहुत जन्मों के संस्कार, इतनी पक्की आदत हो गई है, उसको रोज अभ्यास चाहिए। अगर इस विधि से अगर अभ्यास करते हो तो इस विधि से अगर हम अभ्यास करते हैं और ज्ञान का प्रयोग करते हैं अपने ऊपर तो देख सकते धीरे धीरे। बाबा कहता है जैसे देखो कुएं के ऊपर वो पत्थर डालते ना और रस्सी से पानी निकालते हैं, है ना, पत्थर को भी रस्सी से आप काट सकते हो। कोई कहेंगे ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। तो धीरे धीरे अभ्यास, हमारे बहुत कड़े संस्कार हैं, समय पर अभी भी गुस्सा आता है, हाँ सामने वालों ने गलत बोला, हर एक का अपना लक्ष्य, उसका लक्ष्य अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है, हमें अपनी धारणा है, उसकी अपनी धारणा है। तो अगर लक्ष्य मजबूत है और विधि पूर्वक, कभी कभी लक्ष्य है लेकिन विधि पूर्वक अभ्यास नहीं है तो भी मंजिल तक पहुंचते नहीं है, फिर कहते हैं होता नहीं है, है ना? तो विधि पूर्वक अगर अभ्यास करेंगे आप, ये दो बातों को ध्यान देना चाहिए, मेन ज्ञान और योग, उससे धारणा। धारणा मीन्स हमारे संस्कार, हमारे पुराने बातें जो है, आदत है बोलने का, देखने का, सुनने का, खाने का, कैसे बोलना चाहिए, वो अपने आप मैनर्स नहीं आएंगे ना, अपने आप आ जाएंगे? ज्ञान सुनने से आएंगे? सफेद कपड़े पहने बैच पहने से आ जाएगा? एक दिन सुनने से आएगा? नहीं, इसका आचरण रोज। इसलिए बाबा ने सिस्टम बनाया, रोज आधा घंटा सवेरे योग करो, उससे मन और बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा, फिर ज्ञान सुनो तो याद रहेगा, फिर सारे दिन में कर्म करते समय कुछ ऊपर नीचे होता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो इन एडवांस अगर आप अपने आप को तैयार करते हो तो उस परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं, उस परिस्थिति पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, तभी विजय माला में आएंगे ना, अपने आप तो नहीं होगा। तो इस विधि से अभ्यास अगर करते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर संस्कार को परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं। नहीं तो आप कहेंगे देखो आप आने से पहले इस हॉल में अंधेरा था, तो अंधेरे को निकाल सकते हैं क्या? नहीं, लाइट ऑन किया, अंधेरा कहाँ चला गया पता ही नहीं है, जहां से आए वो अपने आप चला जाएगा। आप कोशिश करो मुझे क्रोध छोड़ना चाहिए, मुझे ये छोड़ना चाहिए, नहीं, ज्ञान के इस विधि से अगर अभ्यास करो आप, जैसे ज्ञान बुद्धि के अंदर समझ में आएगा अपने आप हमारे बुरे संस्कार आदत अपने आप परिवर्तन। ये रोशनी, नॉलेज इज लाइट, ज्ञान को रोशनी कहा। अगर उसको आप धारण करते हो, उसका विधि पूर्वक अभ्यास करते हो, मनन चिंतन करते हो, वर्णन करते हो, तो ज्ञान क्या हो जाएगा? नॉलेज विल बिकम माइट, शक्ति का रूप लेगा। तो ये शक्ति और रोशनी दोनों मिले तो हमारे संस्कार जो बहुत जन्मों से आदत पड़ी है, न चाहते हुए मुख से गलत शब्द निकलता है, अभी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हो गया गलत शब्द निकल जाते हैं। तो ज्ञान का फायदा क्या है? तो भक्ति मार्ग ही हो गया, कहानी सुनी फिर भी वही के वही है नहीं। हमारे वाणी के अंदर मधुरता चाहिए, बाबा कितना धारणाएं बताता है, लेकिन उसका अभ्यास, ये दो अगर आप काम करते हो, एक तीसरा और एक है, और एक काम अगर आप करेंगे तो उसको आप तुरंत देख सकते हो। जो अगले साल बाबा ने कहा था, पिछले साल कि लास्ट मार्च 31 को बाबा ने जो मुरली में सुनाया था, बच्चे चारों सब्जेक्ट में अगर पास होना चाहते हो कि एक काम करो, क्या करो? आप कहेंगे अलग योग लगता नहीं है, मुरली भी याद नहीं रहती है, तो एक ही काम करो बस, सिंपल सार रूप में एक बात बताई, चलते फिरते किसी को देखते ही एक दूसरों को दुआ देते चलो। तो कैसे देंगे? कल एक दिन आप अभ्यास करके देख लो, यहां शांतिवन में इधर रहते हो, यहां करके देख लो कि कल आज रात को आप सोएंगे, देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और कल सवेरे उठते ही सारे दिन में चलते फिरते अपने भाई बहनों को देखते रहेंगे, कोई काम मजदूर भी है काम करने वाले, किसी को भी देखते, एक काम करो कल, एक अभ्यास करके देख लो। क्यों? अभ्यास करने से अनुभव होता है और अनुभव आपको आगे बढ़ाता, हाँ ये करने से आज अच्छा हुआ, ये ठीक हो गया, तो आप आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ के अंदर उन्नति होती है। अगर सुनने के बाद अभ्यास नहीं किया तो उन्नति नहीं, अनुभव नहीं तो उन्नति नहीं है, इसलिए जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो कल एक दिन आप करके देख लो, सारे दिन में चलते फिरते एक घंटे के अंदर एक सेकंड किसी को भी देखते ही बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, अष्ट शक्तियां है। जैसे भक्ति में राम राम करते रहते ना, नहीं तो क्या होता, खाली मन रास्ते पर चलते हो किसी को देखते रहे, बहन ये भाई साहब ने चश्मा क्यों पहना है, ये बैच क्यों लगाया है, शरीर के ऊपर ही चिंतन चलता है ना, आदत पड़ी है, आंखें तो शरीर को देखेंगे ना, आत्मा तो चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है, मस्तक पर चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है, शरीर ही दिखाई देता है, तो शरीर का ही चिंतन चलता है, बार बार नेगेटिव का प्रभाव मन पर पड़ता है, तो वो प्रभाव न पड़े एक मन को स्वच्छ करने के लिए। और रात को ही देखना आप कल, गहरी नींद आ जाएंगे आपको, एक भी नेगेटिव स्वप्न नहीं आएगा। एक दिन करके देख लो, कल सारे दिन में मुख से बोलना नहीं, मन से बोलो जरूर, किसी को देखते ही कोई भी आत्मा हो बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे दो, अष्ट शक्तियां मन में चक्कर चलता रहे। तो हमारे मन से कुछ निकलना चाहिए, दुआ दे दो, ये शक्ति दे, शक्तियों का दान दे दो, तो मन स्वच्छ हो जाएगा। देखना कल सवेरे आप योग में आके बैठेंगे, परसों अपने आप स्वच्छ मन अपने आप एकाग्र होता है, नहीं तो मन के अंदर सारा दिन आंखें बंद करके नहीं चलते हम, कितने लोगों को देखते हैं, कितने भाई बहनों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, मन प्रभावित होता है। तो प्रभाव मुक्त मन, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज कॉल्ड साइलेंस, प्रभाव मुक्त चाहिए, नहीं तो बहुत लोगों का प्रभाव नींद में भी उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं। योग में भी बैठो, जिस जिसको आपने देखा उनकी शक्ल सामने आती है, अरे उन्होंने ये कहा था, इसने ये कहा था, वही बातें आती है, क्यों? मन स्वच्छ नहीं है। तो मन को स्वच्छ करने से कल एक दिन अभ्यास करके देखो, चलते फिरते जो बाबा ने कहा कि बच्चे दुआ देते चलो, तो कल रात को ही आप देख सकते हो कि एकदम गहरी नींद आ जाएंगे, देख लो। क्योंकि मन सारे दिन में आपने, हमारे अंदर दो नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव को आपने जागृत रखा, बार बार करते गए, एक एक घंटे में एक सेकंड ही देर करो, एक एक घंटे के अंदर बार बार पॉजिटिव नेचर अगर जागृत है सारे दिन में, तो रात को उसी स्मृति में सोते हो तो देखना बिल्कुल शांत मन, गहरी नींद है, कोई इधर उधर के विचार नहीं है। सारे आपने इधर उधर घुमा, सेवा किया, सब कुछ किया, मन पर उसका प्रभाव नहीं है। नहीं तो किसको देखते हो, उन सब का प्रभाव रात को सपनों में भी आएगा, योग में बैठो योग में भी आएगा, मुरली सुनने बैठो मुरली भी उसके अंदर ग्रहण नहीं होती है। इसलिए इन तीन बातों का अगर आप ध्यान देंगे, एक मुरली सुनते समय कैसे सुननी चाहिए, योग में जब बैठते हो किस विधि से बैठो, भले 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, बहुत बड़ा हॉल है, खुले खुले आराम से बैठो और विधि पूर्वक रुचि से अभ्यास करो। तो ये 5 प्रश्न याद रखो, मन और बुद्धि दोनों चलनी चाहिए, नहीं तो मन चलते चलते बुद्धि इधर उधर जाती है, दूसरी बातें याद आती है। तो दोनों चलते हैं तो कहां से दूसरे विचार आएंगे, और दो ही रास्ते हैं, या मन या बुद्धि, इन दोनों का प्रयोग करो। और फिर सारे दिन में कर्म करते समय ज्ञान याद नहीं रहता है तो कम से कम ये करके देख लो, एक दूसरों को देखते ही उसको कहा औरों के प्रति शुभ सोचो, क्या सोचेंगे, हमारे पास क्या है सोचने के लिए, तो बाबा की शक्ति है तो बाबा की शक्तियों का दान करो। मैं नहीं दे रहा, आपने देना, आपने जेब से देना नहीं, बाबा ने कहा संगम पर बाप को अपने सेवा में शामिल करो कि सारे कल्प आप अकेले करेंगे, सिर्फ संगम पर बाबा मिलता है। तो बाबा को साथ रखते हुए अगर आप सेवा करते हो, किसी को देखते ही आप पहले दे दो, नहीं अगर देते हो आप कहेंगे हम देते भी नहीं और लेते भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं देते तो लेना पड़ेगा ही। हवे के अंदर कुछ खुशबू है, आपको पूछ के जाएगा कि अंदर, अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा, किसी को देखने के बाद गलत विचार आने के बाद पता चलता, अरे इनको देखने से ये विचार आया, तो वो विचार न आए पहले आप शुभ विचार दे दो। तो पहले से आप औरों को देखते, कोई भी हो, किसी जिसको जानते हो जिसको नहीं जानते हो, अगर आप पहले शुभ विचार करते हो, श्रेष्ठ विचार करते हो, तो दूसरों पर नजर जाते ही पड़ते ही उनके विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। तो एक दिन मन उनके औरों के प्रभाव से मुक्त रहा। अगर सारे दिन में इस प्रकार आप मन को जागृत रखते हो तो मन स्वच्छ है, सवेरे बैठो तो अपन स्वच्छ मन अपने आप एकाग्र हो जाता है, इधर उधर भटकता नहीं है, इधर उधर के विचार नहीं आएंगे। इन तीन बातों पर अगर आप ध्यान दे दो तो आप जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखते जाएंगे, ऐसे लगेगा हाँ हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, तब उमंग आता है। नहीं तो सर रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग करते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, अपने आप नहीं होगा। ऐसे स्कूल में जाने से पास नहीं होते हैं, स्कूल में जाने के बाद विधि पूर्वक पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, है ना, विधि चाहिए। तो आज थके हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा अभ्यास सुनो और इधर ही अभ्यास करके देख लो कैसे एकाग्र होता है। तो अब 2-3 दिन आपके पास है बाबा आने तक, तब तक अपनी स्थिति को आप अव्यक्त बना सकते हैं, क्यों अव्यक्त मिलन है ये, तो इसलिए शांत स्वच्छ मन चाहिए, तो इसका अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति।